अब है आगे सूरत अन्नूर, रोशनियों वाली सूरत। पूरी सूरत को अगर एक व्यू में देखें तो पहली 10 आयतें हद्दे सिना और हद्दे कज़फ़ हैं, यानी अगर खुल्लम खुल्ला महफिलों में ये गुनाह होने लगे और 4 गवाहियां भी मिल जाएं तो फिर ऐसे लोगों के ऊपर क्या हद लगेगी। और इसी तरह से तोहमत, बोहतान लगाने वाले, सिर्फ 20 कोड़ों का फ़र्क है दोनों में। फिर आयत 11 से 26, 11 to 26, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी का जिक्र है, कैसे आसमानों से उनकी बेगुनाही साबित हुई और क़यामत तक के लिए अल्लाह ने उनको कुरान का हिस्सा बना दिया। हकीकत है कि अगर आप सच्चे हैं तो फिर गम ना कीजिए, कोई आपके बारे में बोले ना बोले, अल्लाह की गवाही काफ़ी है। आयत 27 से 34, घर के अंदर के पर्दे के अहकाम, यानी घर में रहते हुए जो महरम लोग होते हैं या गैर महरम, किसके सामने कितना आना है। पीछे सूरत अल आराफ में हमने पढ़ा तो वहाँ औरत का औरतों के बीच में क्या लिबास और सतर होगा, यहाँ घर के मर्दों में, और फिर आगे सूरत अल अज़ाब में बाहर की दुनिया में एक औरत कैसे निकलेगी। आयत 35 से 40, ईमान और कुफर के लिए तमसीलात, के ईमान रोशनियाँ हैं और कुफर अंधेरों पे अंधेरे हैं। ईमान है नूरुन अला नूर और कुफर है जुलुमातुन अला जुलुमात। आयत 41 से 46 में अल्लाह ताला की कुदरतों का जिक्र है। 47 से 54 में मुनाफिकाना और मोमिनाना तर्ज अमल है, एक तरफ समेना के बाद अताना है और दूसरी तरफ समेना के बाद असईना है। आयत 55 से 57, निज़ाम खिलाफत के क्याम की बिशारत, के बिल आखिर अल्लाह ईमान वालों को ही दुनिया की खिलाफत दे देगा। 58 से 61, घर के अंदर के पर्दे के अहकाम, यानी बच्चे भी माँ बाप के कमरों में आए तो किस हाल किस तरह आए, इजाज़त लेने की बातें हैं। और 62 से 64, नज़्म जमात, डिसिप्लिन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बगैर बात नहीं बनती। अब चलते हैं आयत से आयत पे। पहली आयत जलाली अंदाज है, सूरत अनज़लना हव फरतना हव अनज़लना फीहा आयात आयातिम बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ऐसे लगता है कि एक शाही फरमान है, बात करो जिसको कोई एतराज़ है हमारे पास आए। ना ये नबी की बातें, ना ये सहाबा की बातें, ना सहाबियात के किस्से, ये अल्लाह की बातें और फ़र्ज़ है, ना ये सुन्नत, ना कोई नफिल, ना एक तुम्हारी मर्जियों पे छोड़ी हुई बातें, बल्कि इनको मानो। यानी बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कोई किसी भी चीज़ के ऊपर अगर लेकर चले और बिल्कुल अपने आप को इन चीज़ों पे लेकर चले इस रंग में कि देखो तुम बात करो हमसे। क्योंकि देखिए, जब कोई किसी के पास हुक्म आता है और कोई बात होती है तो फिर इंसान इस चीज़ के मामले में अक्सर सोचता है कि कौन है भाई, तो अल्लाह कहते मैं हूँ, बात करो। फिर आए 2 से 3, हद जिना है, और ये तब लगती है जब सारी पाबंदियाँ और सारी चीज़ें पिछली तमहीदें पूरी हो चुकी होती हैं। आयत 4 to 5 में हद कज़फ़ है, किसी के ऊपर तोहमत लगा दी राह जाते ही, स्कैंडलिज्म सारे ख़त्म हो जाए अगर इस आयत की समझ आने लग जाए। उलाइका हुमुल फासिकून कहा गया ऐसे लोगों को। फिर आयत 6 से 10 में शोहर की तरफ से बीवी पर जिना का इल्ज़ाम है, लियान होगा, यानी गैरों पे तो देखा, गैर किसी को देख भी लिया लेकिन गवाह नहीं है तो का चुप कर जाओ, अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें हद लग जाएगी बुहतान लगाने की। पर सवाल पैदा होता है कि शोहर कैसे चुप करे, अगर खुदा ना खास्ता अपनी बीवी को किसी गलत काम में देख ले तो उस पर फिर जो तरीक़ेकार है वो इन आयतों में। लियान तलाक की सख्त तरीन किस्म है जिसके बाद फिर हमेशा के लिए वो अलग हो जाएंगे। आयत 11 से 18, 11 to 18, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की पाक दामनी का ऐलान है। इन्नल्लज़ीना जाओ बिलिफ की उस्बतुम मिनकुम, फ़ख्र किया करती थी कि मेरी आसमानों से बरात साबित हुई, और अल्लाह ने एक औरत के ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम को कैसे धो दिया, क़यामत तक के लिए लोगों को बता दिया कि कोई आयशा के बारे में बात न करे रज़ी अल्लाह अन्हा। आयत 19 से 20, मुसलमानों में बेहयाई फैलाने वालों का बुरा अंजाम, ऐसे लोग जो माशरों में कैंसर से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जिनके एजेंडे क्या हैं। अंतशी अल्फाखिशतु फिल्लज़ीन आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरा। आयत 21, अल्लाह का फ़जल ना हो तो कोई भी पाकीज़ा नहीं रह सकता, यानी अल्लाह का फ़जल मांगा करें कि अल्लाह मेरी ज़ुबान, मेरी निगाह, मेरा दिल पाक रहे। आयत 22, दूसरों की ज़्यादती माफ़ कर दो, अल्लाह भी तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, यानी हर वक्त दूसरों के पीछे न लगे रहो, उनकी लेग पुलिंग ना करो, बल्कि वल याफ़ु वल यस्फ़हु अला तुहिब्बून अन यग़फ़िर अल्लाहु लकुम, तो जो चीज़ अल्लाह से मांगते हैं वो दूसरों को भी दीजिए। आयत 23 से 25, पाक दामन ख़वातीन पर तोहमत लगाने वालों का बदतरीन इंजाम है, إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات محسنة بهن غافلة بهن مؤمنة ہیں، یعنی مراد ہے بھولی بھالی عورتیں، لعنوا فی الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں سے دور اور آخرت میں بھی دور ہوں گے، ولہم عذاب عظیم، بڑا برا انجام ہوگا ان کا، بڑا عذاب ہوگا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، قیامت کے دن گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اور اس دن اللہ ان کو پورا بدلہ دے گا جو ان کے گناہ کی سزا ہوگی. پھر آئے 26، جیسا کردار ویسی رفاقت، یعنی الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات، گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں، اور اسی طرح گندی عورتوں کے لیے گندے مرد، اور والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اصل میں تو حضرت عائشہ کی بے گناہی ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ عائشہ بیوی کس کی ہیں، اتنے پاک شخص کی بیوی کیسے ناپاک ہو سکتی ہے، سکھانے کا خوبصورت انداز ہے. پھر آئے 27 سے 29، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے ہدایات. سورت کا پوری 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 سورت نور کا ٹاپک زنا ہے اور اس کے سدے ذرائع، یعنی زنا کیا ہے، کیسے ہے، تہمت لگائے گا کوئی تو یہ ہوگا. آگے سے آپ دیکھیے گا مستقل وہ پریکاشنز ہیں کہ جو لے لی جائیں کسی معاشرے میں اور گھروں میں تو پھر یہ کبھی فیل نہیں ہوتا، جس میں پہلی چیز کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہونا، انس حاصل کرو اذن نہیں، یعنی کہ سر پہ کھڑے ہو جاؤ اور اگلے کو مجبوراً دروازہ کھلنا پڑے، پہلے اس کو فیملیئر کر لو، وقت سے پہلے بتا دو ہم آ جائیں، ہم آ سکتے ہیں، اس کو اتنا وقت دو، بالکل دروازے پہ نہ کھڑے ہو جاؤ، اگلے کو مارجن دے کر پھر اس کے پاس آؤ. یہ گھر میں رہنے والوں کے لیے بھی حکم ہے، ایک کمرے سے دوسرے میں اور باہر سے تو آبویسلی ہے. پھر آئے 30 سے 31، گھر کے اندر پردے کے لیے ہدایات، کیسے مرد بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں گے اور عورتیں بھی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، باپ کی نظریں بیٹی کے سامنے جھکی ہوں گی، بھائی بہن کی طرف نہیں دیکھے گا، بیٹا ماں کی طرف گھور گھور کے نہیں دیکھے گا، تو باہر کی دنیا میں کہاں کون دیکھ سکتا، کیسے نظریں جھکتی ہیں، تو پھر دیکھیے محرم اور غیر محرم کا فرق نہیں پتہ چلتا، محرمات کو نہیں گھور سکتے تو غیر محرم ہیں کہاں، تو پھر بڑی بڑی اسکرینوں پہ کون دیکھے، اور بل بورڈز کو کون دیکھے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لوگ کیسے دیکھیں. یہ سب دیکھنے اور سوچنے کی باتیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر لوگ اپنے آپ کو اگر لے آئیں تو معاشروں میں سے گندگی بے حیائی سب رفع ہو جائے اور پاک صاف معاشرے بن جائیں. پھر آئے 32 سے 34، بے نکاح لوگوں کے نکاح کر دو، ایم کہتے ہیں ایسے لوگوں کو. ون کہ الیام امن کم و صالحین امن عبادی کم و امائی کم، نکاح کو آسان کرو. الحمدللہ آج صبح ہم نے پارہ نمبر 20 کیا DQ 2020 میں، اور فتنوں اور ان کے حل کے ٹاپک کے اندر آج ہمارا ٹاپک تھا رشتوں میں رکاوٹ کا ایشو، یعنی رشتے نہیں ملتے، رشتے رشتے. اگر آپ میں سے کسی کا بھی ایسا کوئی کنسرن ہو تو آج صبح والا پارا یوٹیوب سے، فیس بک سے، مکسلر، جہاں سے بھی ملتا ہے آپ سن سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کیا ڈیوائن گائیڈنس دی اللہ نے آپ کو مجھے اس معاملے میں. پھر آئے 35، آیت نور، یعنی نور ایمان کے لیے تمثیل ہے. اللہ نور السماوات والارض، کیسے اللہ تعالیٰ کا نور آسمان و زمین میں ہے، اور وہ ایک بندہ مومن کے دل میں سما جائے جب تو اس کا دل بھی روشن، اس کی آنکھ بھی روشن، اس کی زبان بھی روشن. پھر آیت نمبر 36 سے 38، نور ایمان کے ثمرات کیا ہیں، ایسی شخصیات پیدا کی جاتی ہیں اس کے بعد کہ جن کو تجارت سے زیادہ اللہ کی یاد پیاری ہوتی ہے، جو مسجدوں میں لگے رہتے ہیں، جو نمازیں قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے، اور یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، جن کے دل ہر وقت آخرت سے کے عذابوں سے ڈرتے رہتے ہیں. اس کے برعکس آیت 39 بے روح اعمال کے لیے ایک تمثال ہے، بے روح اعمال کے لیے ایک تمثیل ہے، یعنی وہ عمل جو کفر کے ساتھ کیے جائیں یا پھر اللہ کے ماں سوا کے لیے کیے جائیں. والذین کفروا اعمالہم کسراب، سراب ہیں وہ، معراج ہیں، دور سے نظر آتی ہوئی پانی کی لہریں جو اصل میں سراب تھی، صحراؤں میں سڑکوں پہ جو پانی دکھتا ہے یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. آپ دیکھیے کہ جب کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں نا تو اس کے اندر ہمارے سامنے یہ ایک سوال آ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کیا ہمارا یہ کام اللہ کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے؟ تو جب ہمارا اپنا اللہ سے تعلق ہی نہیں تو ہماری ان نیکیوں کا کیا فائدہ جو حقوق اللہ نہیں پورے کرتے، ان کے حقوق العباد کہاں پورے ہوں گے؟ तो वो नेकियां कीजिए जो अल्लाह के यहाँ कबूल भी हों। फिर आयत 40, ईमान और अमल दोनों से महरूमी के लिए तमसील है, यानी ना जिनके पास ईमान है और ना उनके पास अमल हैं अच्छे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, जिसके लिए अल्लाह ने रोशनी नहीं की फिर उसको आप कहाँ से नूर देंगे। आयत 41 से 46 अल्लाह ताला की अजमत और कुदरत का बयान है, किस तरीके से एक इंसान अल्लाह के आगे झुका होता है। कायनात बोल बोल के टीम वर्क दिखा रही है। अलम तरन अल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाती वल अर्द व तईरु सवाफात, यानी कायनात से मिसालें देकर अल्लाह की बड़ाई बयान की गई है। आयत 47 से 50 मुनाफिकाना तर्ज़ अमल की बातें हैं, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, और बातों के सिर्फ गाजी हैं, किरदार के गाजी ना बने। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने इसमें वॉर्न किया कि अपनी इसलाह कर लो वरना तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। अफी कुलूबिहिम मरदुन अम इरताबू अम यखाफूना अन यखीफ अल्लाहु व रसूलुहु अन यहीफ अल्लाहु व रसूलुहु बल उलाएक हुमुस ज़ालिमून। 3 वजूहात दी गई हैं इसमें इस चीज़ की कि जो लोग अल्लाह के की बात नहीं मानते तो या तो उनको लगता है कि अल्लाह का दीन बड़ा मुश्किल है, अल्लाह ने मरसा ज्यादतियाँ की हैं, और या शक की बीमारी है या टेढ़ापन है। अल्लाह हमारे अंदर से भी निफाक को निकाल दे। फिर आयत 51 52, मोमिनाना तर्ज़ अमल, इन नमका नकौल मोमिनीन, ईमान वालों की तो बस एक ही बात है, क्या कि जब कभी कोई हुक्म दिया जाता है उनको, इज़ा दू इल्लाही व रसूलिही लियाहकुम बैनहुम अन यकूलू समेना व अताना, सुनते हैं और मानेंगे, वौलाएका हुमुल मुफ्लिहून। फलाह की बातें सूरत में इस बारे में। फिर आयत 53, झूठी कस्में मत खाओ, क्यों झूठी कस्में खा खा कर अपने आप को मजीद गुनाहगार करते हो। वक्समु बिल्लाही जख्त ईमानिहिम, कस्में क्या होती थी, हाय को काम करने को कहिए तो साई देखिए गलाई न मरता हूँ ला यखरुजुन्ना, आप कहें साई हुक्म करें, आपका हुक्म सर आंखों पर, ये स्टाइल होता है। लेकिन जब उनको कहा जाए कोई अमल, कोई काम, कोई प्रोजेक्ट दिया जाए तो फिर उसका हक भी ना अदा कर पाए। तो झूठी कस्में खाना मुनाफ़िकत की एक बहुत बड़ी निशानी है, इसलिए कहा कि झूठी कस्में मत खाओ। और 54 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी सिर्फ हक को पहुंचा देना बस। वमा अल रसूल इल्ल बलागुल मुबीन, पीछे नहीं पड़ते नबी, बात कर देते हैं उसके बाद वो जाने और उनका रब, किसी की कंसुई भी नहीं लेते कि कैसे किया, क्या ना किया, किधर गए, क्या हुआ, यानी बस लोगों को उनके रब के साथ जोड़ के आप बीच में से निकल जाइए। आयत नंबर 55 से 57, निज़ामे खिलाफत आकर रहेगा जी। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वामिलुस्सालिहाती लयस्तख्लिफन्नहुम फिल अर्दी कमस्तख्लफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। क्या पता चला कि दुनिया में आखिरी गलबा इस्लाम का ही है। लोग अल्लाह ताला के दीन को नाफिज करके देखें, दुनिया भी मुसलमानों की और ईमान वालों की और आखिरत तो होगी, तो लिहाजा इसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। आयत 58 से 59, घर के अंदर पर्दे के लिए अहकाम, यानी घर में एक दूसरे को मिलने, उनके कमरों में जाने आने के वक्त मुकर्रर हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत ईमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम, जो बच्चे अभी बड़े नहीं हुए उनकी भी ट्रेनिंग कीजिए, क्योंकि मिनकुम सलास मरात, 3 औकात ऐसे हैं कि जिस वक्त बच्चे भी माँ बाप के कमरे में नहीं जाएंगे बगैर इजाज़त लिए। और फिर आयत 60, बूढ़ी औरतों के लिए पर्दे के हुक्म में रियायत है, लेकिन जवानी में किया होगा तो बुढ़ापे में उतारेंगे। कितनी बड़ी दलील है इस बात की कि जवानी में एक औरत अपने आप को छुपाएगी। वल कवायद मिनन्निसा इल्लाति ला यरजून निकाहन फलैसा अलैहिन्न जुनाहुन अन यदान थियाबहुन्ना, शर्त इधर भी है, गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, सीधी सादी बुढ़ी माई, कोई क्रीम सुर्खी पाउडर लगाने की ख्वाहिश नहीं, कोई कपड़ों पे कुछ भी सलमे सितारे नहीं, बस सीधी सी औरत उठ के चल पड़ी तो फिर अगर मोटे कपड़े बाहर जाते हुए जो पहने जाते हैं वो उतार दे तो कोई हर्ज नहीं है, और अगर वहीं यस्ता फिफ न खैरुल्लहुन, अगर वो भी बच जाए तो भी बड़ी बात है। आज जवान बच्चियों को यह आयत पढ़ाने की ज़रूरत है कि बुढ़ापे में क्या उतारा जाएगा, अगर जवानियों में नहीं पहनी बाहर की चीज़ें तो फिर जवान बुढ़ापे में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आए 62 से 63, नज़म जमात, डिसिप्लिन ले जाना, टीम वर्क इज़ अ ड्रीम वर्क, शर्त यह कि आप एक डिसिप्लिन को फॉलो करें, एक के हुक्म को लेकर सब चलेंगे और उसी की इंस्ट्रक्शंस के अंदर चलेंगे। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही से लेकर आगे तक। तो इज्तमाई कामों में जाने वाले एकदम बीच में से उठ नहीं जाते, बग़ैर इजाज़त के वो निकलते नहीं, और जब तक हुक्म ना हो काम करते नहीं। और आखिर में फिर आयत 64, अल्लाह जानता है कि हम किस हाल पर हैं। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم। तो बहुत ही प्यारी सूरत, माशर्ती अहकाम से भरपूर पूरी ही सूरत एक हिदायतनामा है। चंद नंबर नोट कीजिएगा जो आपने बाद में इंशाल्लाह सुननी है इनकी तफसीर। सबसे पहले आयत नंबर 2, जिना की सज़ा है। आप इस वक्त इसको समझ ही नहीं पाएंगे जब तक आप इसका बैकग्राउंड नहीं सुनेंगे। तो आप किसी भी तफसीर के सेट में से इन आयात की तफसीर सुनिए कि ज़ानियत व ज़ानी फजलिदु कुल्ल वाहिद मिन्हुमा मियत जल्दा। फिर नेक्स्ट आयत नोट करिएगा, आयत नंबर 4, तोहमत की सज़ा। वल्लज़ीन यरमूनल मुहसनाति सुम्म लम यातू बिअरबाति शुहदा शुहदा फजलिदूहुम समानीन जल्दा समानी नजलता तो वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा वलाइका हुमुल फासिकून। ज़रा सुनिएगा स्कैंडल्स बनाने वालों की सज़ा क्या है। सारे इवनिंग स्पेशल, सारे स्पेशल बुलेटिन और फिल्मी सितारों पे तोहमतें और हुक्मरानों पे और सियासतदानों के जोक्स सब लोग कान खोल कर सुन लें। और तो लोग परहेजकार औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और इस पर चार गवाह न लाएं तो इनको 80 कोड़े यानी 80 व्हिप्स मारो। और कभी इनकी शहादत कबूल ना करो, यानी किसी के निकाह के वक्त ये गवाह नहीं बन सकते। निकाल लो इनको, इन पे हद लग चुकी है, किसी और को बुलाओ, कैसी बेइज्जती की बात होगी। और यही बदकिरदार लोग हैं, तो ज़ुबान आँख को सोच कर इस्तेमाल करना। आयत 19, फहाशी फैलाने की सज़ा। इन्नल्लज़ीना युहिब्बून अन तशीअ अल्फ़ाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम। तो फहाशी फैलाने वालों के ये तो गोल यही हैं, लेकिन अल्लाह ने इनको पकड़ना। इसलिए 18th पारे का हमारा DQ 2020 का जो थीम था वो भी फहाशी का फितना था, बदनजरी का फितना है, कैसे तशीयुल फाहिशा को रोका गया और हया से महरूम कर देने वाले अमाल से रोका गया। आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ 2.5 आवर में आप पूरे पारे में से बहुत सारे नुक्ते लेंगे जिससे आपको यह आयत समझ आ सकती है। और फिर आयत 27 से 29 में घरों में दाखिले के आदाब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदख़ुलू बुयूतन से लेकर वल्लाहु यालमु मा तुबदूना व मा तक्तुमून। डिसिप्लिन रखो, अपने बच्चों को तसलीका सिखाओ, तहजीब सिखाओ। फिर आए 30 से 31, घर के अंदर का पर्दा। हम पर्दे की बात आती औरतों को वजह बनाते हैं, हालांकि देखिए अल्लाह ताला पहले मर्दों को कहते हैं, कुल लिल मोमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। फिर औरतों को भी यही हुक्म देते देते एक एक्स्ट्रा चीज़ की बात करके, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, क्योंकि औरत में खूबसूरती है तो एक एक्स्ट्रा चीज़ औरत पे आ गई कि जीनत का इजहार ना करो और ना पाँव मारो, बल्कि अपनी ओढ़नियों को अपने सीनों पे डाल लो और अपनी जीनत को महरम रिश्तों के अलावा दूसरों के साथ शेयर ना करो। और होते होते वतूबु इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, के सब इज्तमाई तौबा करो। हकीकत है कि पर्दा हो नहीं सकता जब तक मर्द और औरत अपनी लिमिट्स में ना रहें। तो अल्लाह करे कि आज हमारे घरों में ही में भी यही शरई पर्दे के अहकाम नाफिज हो जाएं। फिर आयत 55 जो आपको बताई गई, वादा खिलाफत, वाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम से शुरू होती है, फौलाइका हुमुल फासिकून, कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आपको खिलाफत मिले, आप वर्ल्ड लीडर बने, तो आपको इस्लाम का निज़ाम कायम करना पड़ेगा। आयत 58 से 60, पर्दे से मुतलिक मज़ीद अहकाम। घर के अंदर बच्चे, कनीज़ें भी रात की 3 घड़ियाँ, मसलन फजर से पहले का वक्त, गर्मी का वक्त दोपहर का, और ईशा की नमाज के बाद का, इन 3 वक्तों में कोई भी किसी के पास ना जाए बिला इजाज़त। फिर आयत 58 में बच्चों और 60 यानी नहीं आयात में कुछ और अहकाम भी हैं जिस पे अमल किया जाए तो अल्लाह की रहमत से मुआशरों की तत्खीर होगी। पूरे मदीना के दौर में आपको एक आध सिर्फ वाक़ मिलता है जिसमें कोई ऐसी नफ्स की शरारत हुई और कोई जिना का फेल हुआ या होने से रह गया। आज देखिए घर घर में ऐसे मामले हैं, अल्लाह बचा के रखे सबको। आयत 63, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार की अहमियत, यानी सुन्नत को अहमियत दो, हदीस को अहमियत दो, रसूल का पुकारना आम लोगों जैसा पुकारना नहीं होता। ला तजलु दुआ रसूली बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा, यानी टेक इट सीरियस, और आंख बचा कर इज्तमाई कामों से निकल ना जाया करो, और जो सुन्नतों की मुखालिफ करते हैं उनको डरना चाहिए। अन तुसी बहुम फितना तो नो युसी बहुम अजाबुन अलीम। तो ये थी सूरत नूर। अल्लाह ने इसमें बहुत सारे नूरानी अहकामात रखे।